समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसके लिए हम लेकर आए हैं तमाम खबरें और कई महत्वपूर्ण जानकारी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, साथ ही हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज उनके पास। इन सब के अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और कार्यक्रम के अंत में हम विशिष्ट लोगों को याद भी करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के संक में आज मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, स्वागत है आपका भी।
हेलो निखिल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून, यू ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट निखिल, and for you we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India reports, capsules, business tributes and much more, all these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
Ji haan.
Voting for the first phase on 43 assembly constituencies to take place in Jharkhand tomorrow. Over 200 companies of security forces deployed for smooth conduct of polls.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कॉल्स फॉर एडेप्टेटिव डिफेंस स्ट्रेटजीज टू काउंटर इवॉल्विंग वॉरफेयर थ्रेट्स, सेज इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक चॉइस बट अ नेसेसिटी।
इस वित्तीय वर्ष में 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41% बढ़कर 12,11,000 करोड़ रुपए हो गया।
And now, Nikhil, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Public Service Broadcasting Day and World Pneumonia Day. Well, to start off with the first topic, Public Service Broadcasting Day has been observed today. The day is celebrated every year to commemorate the only visit of Mahatma Gandhi to the studio of Akashvani in Delhi in 1947.
राष्ट्रपिता ने उन विस्थापित लोगों को संबोधित किया था जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। 77 साल पहले वो दिवाली का दिन था जब महात्मा गांधी विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों से मिलने नहीं जा सके और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया।
Yes, Nikhil, and this was Gandhiji's first and last live broadcast on Akashvani on this day in 1947. And, Gandhiji began his speech saying, My brothers and sisters who are suffering.
मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ। मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ। लेकिन दुख के साथ मिल जाना, वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है।
Yes, and Gandhiji said that he saw the medium of radio as Shakti, the miraculous power of God.
बिल्कुल अभिषेक, अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के समय में जाएं तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अगस्त 1942 में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था, तब रेडियो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद भारतीय नेताओं और प्रेस पर ब्रिटिश सरकार की सख्ती के मद्देनजर उषा मेहता और उनके सहयोगियों ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी और फिर रेडियो 27 अगस्त 1942 को चालू हुआ और ब्रिटिश सेंसरशिप को किनार करते हुए भारत के विद्रोह की आवाज, स्वाधीनता संग्राम से संबंधित समाचार तथा संदेश सीधे भारतीय लोगों तक प्रसारित किए जाते थे।
Yes, Nikhil, and the radio played a crucial role in spreading Gandhi's message and the principles of Quit India movement across different parts of the country, especially at a time when most national leaders were arrested and the press was censored. The broadcast helped boost the morale of the Indian populace and freedom fighters by informing them about the movement's progress and encouraging continued resistance against the British rule.
ऐसे कठिन समय में भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन एक महत्वपूर्ण तकनीकी और तार्किक उपलब्धि थी।
Yes, and now moving on to a second topic in a Dateline segment, which is the World Pneumonia Day. And I'd like to start off this segment with the words of Giovanni Papini, who said, Breathing is the greatest pleasure in life. Well, Nikhil, World Pneumonia Day, observed on November 12th each year, that is today, is dedicated to raising awareness about pneumonia, a life-threatening but preventable and treatable respiratory illness. And the theme for World Pneumonia Day in 2024 is Every Breath Counts, Stop Pneumonia in Its Track.
ये विषय प्रत्येक सांस के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देता है और समय पर पता लगाने, प्रभावी उपचार तथा निवारक उपचारों के माध्यम से निमोनिया से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है.
Yes, a pneumonia is an acute respiratory infection of the lungs. It is also a pneumococcal disease caused by bacteria called Streptococcus pneumoniae or pneumococcus. And it doesn't have one single cause. It can develop from either bacteria, viruses or fungi in the air. And children whose immune systems are immature, like those of newborns, or whose immune systems are weakened, such as by undernourishment or diseases like HIV, are more vulnerable to pneumonia.
निमोनिया संक्रामक है और खांसने या फिर छींकने से फैल सकता है. ये तरल पदार्थों के माध्यम से भी फैल सकता है, जैसे बच्चे के जन्म के दौरान रक्त या फिर दूषित सतहों से. निमोनिया एक ऐसा संक्रमण है जो एक या दोनों फेफड़ों में वायु की थैलियों को फुला देता है और फिर हवा की थैलियां तरल पदार्थ या मवाद शुद्ध पदार्थ से भर सकती हैं, जिससे कफ या मवाद के साथ खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है. और आपको बता दें कि बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वो निमोनिया का कारण बन सकते हैं.
Yes, Nikhil, and let me tell our listeners here that pneumonia can occur in young and healthy people, but it is most dangerous for older adults, infants, people with other diseases and those with impaired immune systems. So, but pneumonia itself isn't actually contagious, but the bacteria and viruses that cause it are. And for instance, the flu is contagious and can lead to pneumonia, but most people who get the flu won't get pneumonia.
सबसे अधिक pneumonia का कारण बनने वाले bacteria, Streptococcus pneumonia, संक्रमित सतहों को छूने या खांसने और छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है. कवक के कारण होने वाला निमोनिया संक्रामक नहीं है. वहीं फंगाई संक्रमण वायरस और बैक्टीरिया की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैल सकता है.
Yes, now let's also talk about some signs and symptoms to look out for in pneumonia.
Yes, बिल्कुल, हम बात करते हैं इस पर. तो जब सांस लेते हैं या खांसते हैं तो सीने में दर्द होता है. मानसिक जागरूकता या फिर भ्रम या परिवर्तन, यानी खासतौर पे 65 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग होते हैं उनसे मानसिक परेशानी भी हो सकती है. खांसी, जिससे कफ उत्पन्न होता है, थकान होती है, बुखार आता है, पसीना आता है, कपकपी वाली ठंड भी लगती है और शरीर का तापमान सामान्य से कम हो सकता है, खासतौर पर जो 65 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उनमें दिक्कत आ सकती है. और इसके आगे के लक्षणों में मितली आना, उल्टी होना या फिर दस्त लगना भी होता है, और सांसों की तकलीफ तो होती ही है इसमें.
Yes, and treatment of pneumonia depends on the type of severity of the pneumonia, and bacterial types of pneumonia usually treated with antibiotics. And viral types of pneumonia are usually treated with rest and plenty of fluids. Antiviral medications can be used in influenza. Fungal types of pneumonia are usually treated with antifungal medications. And along with vaccinations, physicians also recommend these following measures. What are they, Nikhil, if you'll tell our listeners?
Abhishek, नियमित रूप से हाथ धोना बहुत जरूरी है. खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकना आवश्यक है. धूम्रपान से परहेज करना बहुत जरूरी है. स्वस्थ भोजन करना चाहिए. सप्ताह में कम से कम 5 दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए. और ऐसा व्यक्ति जो निमोनिया से पीड़ित है उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी थूक या खांसी की वजह से दूसरों को तकलीफ न होने पाए.
Yes, and this day also emphasizes the impact of pneumonia, especially among children under 5 and the elderly, who are most vulnerable. And this day aims to highlight prevention methods, advocate for better treatment options, and reduce the mortality rate linked to pneumonia.
स्वास्थ्य संगठन, सरकारें और समुदाय जागरूकता फैलाने, टीकाकरण को बढ़ावा देने या फिर जीवन रक्षक चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के अभियान चलाते हैं, आयोजन करते हैं और कार्यक्रमों का संचालन भी करते हैं.
Yes, Nikhil, and this day was established in 2009 by the Global Coalition Against Child Pneumonia, a collective of public health organizations determined to address the lack of awareness about pneumonia's severity. And the fact that it claims the lives of over 800,000 children each year.
रोकथाम और उपचार योग्य होने के बावजूद निमोनिया भारत की बात क्या दुनिया भर में ये बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है.
Yes, and let's also talk about preventive tips to reduce the risk of pneumonia. Vaccinations are one of the most effective ways to prevent pneumonia. Vaccines such as pneumococcal and flu vaccines reduce the risk of bacterial and viral pneumonia respectively. Regular hand washing with soap helps prevent the spread of germs that can lead to the bacteria and viral pneumonia respectively. And regular hand washing with soap helps prevent the spread of germs that can lead to respiratory infections like pneumonia. And covering the mouth and nose while coughing or sneezing helps prevent the spread of germs. And keeping a distance from infectious persons. So, Nikhil.
इन सब के अलावा ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सभी को फलों सब्जियों और ऐसे प्रोटीन से संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा हो. पर्याप्त नींद लेना, तनाव कम करना और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना इसका बहुत ही अच्छा उपचार है. और इन सब उपायों का पालन करने से ही व्यक्ति को निमोनिया के जोखिम से बचाया जा सकता है. और श्रोताओं, समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं तक पहुंचने का और उनसे ये जानने का कि क्या खास आज उनके पास है. तो अभिषेक, आज कहां से शुरुआत कर रहे हैं हम?
Yes, I think we'll start off with a story about the International Film Festival. And the 55th International Film Festival of India, IFFI, is set to start from the 20th of this month in Goa. And Australia is the country of focus this year with a dedicated package of Australian films. The festival will open with the Asia premiere of Michael Gracey's Better Man, an Australian film that offers a captivating glimpse into the life of the iconic British pop star Robbie Williams. The Satyajit Ray Lifetime Achievement Award this year will be presented to celebrated Australian director Philip Noyes. And let's listen to a report that we have.
The 9-day-long festival is all set to start with a vibrant lineup and diverse programming, promising an unforgettable celebration of global cinema. This year's IFFI has received over 1,600 submissions from 101 countries, which is a testament to the festival's growing international standing. IFFI 2024 will present over 180 international films, including 15 world premieres, 3 international premieres, 40 Asian premieres and 106 Indian premieres. As these are a selection of celebrated titles and award-winning films from the global circuit, this year's festival is set to leave a lasting impact on the audience. Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan said that there has been immense response from filmmakers and audience for IFFI.
This festival is internationally one of the largest festival in the international level. More than 2,000 international films are entered here. So that is the response we are getting from the international audience and international delegates.
Secretary of the Ministry of Information and Broadcasting Sanjay Jaju said IFFI 2024 is a celebration of global cinema with the focus on emerging talent, accessibility and cultural heritage.
This year's theme we have chosen, considering that we have the demographic dividend and we have the very young content watching group in our country, and that's why we're calling it this festival being called as the sub themes as Future is Now. And that's how our entire focus in this festival has been on the young filmmakers, young content creators.
Festival director of IFFI and eminent filmmaker Shekhar Kapoor said IFFI honors and nurtures the timeless art form of storytelling, which is the heart of cinematic experience.
जितने अब नए फिल्म मेकर आ रहे हैं, फ्यूचर फिल्म मेकर्स ऑफ टुमारो, ये सब एक मेला है फिल्म मेकिंग का. तो ये मेला मिलन का मेला है बिटवीन फिल्म मेकर्स, टीचर्स, मास्टर क्लासेस एंड न्यू यंग फिल्म मेकर्स. जो हमारी जर्नी है, ये इंडियन हिंदुस्तान की जर्नी है, भारत की जर्नी है, हमारे फिल्मों की जर्नी है.
ए न्यू अवार्ड ऑफ बेस्ट डेब्यू इंडियन डायरेक्टर हैज बीन इंस्टीट्यूटेड टू रिकॉग्नाइज द यंग फिल्म मेकिंग टैलेंट अक्रॉस इंडिया. 12 इंटरनेशनल एंड 3 इंडियन फिल्म्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू compete for the coveted Best Film Award, which has a golden peacock and a cash prize of 40 lakh rupees. The Indian Panorama section will showcase 25 feature films and 20 non-feature films representing India's rich cultural and linguistic diversity. Anupam Mishra for Parikrama, Delhi.
और अब चलते हैं हम बिहार की तरफ, जहां पर वायु की गुणवत्ता फिर से बिगड़ने लगी और कहा यह भी जा रहा है कि शहरी निर्माण कार्य और धूल कणों के कारण शहर में हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई. तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास.
वायु प्रदूषण का सबसे अधिक असर पटना शहर में देखा जा रहा है. राजधानी शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से 300 के बीच कई स्थानों पर दर्ज किया गया. शहर के मुख्य इलाके गांधी मैदान, सचिवालय, वेटनरी मैदान, दानापुर, तारा मंडल और पटना सिटी में अत्यधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। बड़ी पैमाने पर चल रहे निर्माण कार्य और वाहनों के प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण PM2.5 यानी कणीय तत्व हवा में अधिक है। इसके चलते भी AQI का स्तर खराब दर्ज किया जा रहा है। पटना के अलावा बेतिया, बेगूसराय, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट देखी जा रही है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ऑन मंडे इनॉग्रेटेड द थर्ड पंचकुला बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 इन पंचकुला। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
On this occasion, he also inaugurated Sardar Patel libraries built in village Arunai, district Kurukshetra, village Bara, district Karnal, and village Madana Kalan, district Jhajjar, through video conferencing. He also went around the book fair and released several books. Addressing the gathering, Seni said, "Our culture and heritage are available in the books. Darkness of life can be dispelled only with the light of knowledge. The purpose of this book fair is also to enhance our knowledge. This book fair features thousands of books in various languages, large crowd gathered, which underlined the significance of books. Anyone with an interest in a particular subject could find valuable knowledge in the wide selection available in this fair." Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam has established over 25 libraries in the past 3 years through its CSR initiatives, and 3 more libraries were inaugurated, which serve as an inspiration for other departments. District-level libraries are already operational at district headquarters, and the government is now upgrading digital libraries in colleges and schools. The government is also opening libraries in villages equipped with computer facility. Online resources and e-books are also made available, allowing youth to access information about their subject online. Akanksha Saxena for Parikrama from Chandigarh.
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
12th of November 1930, first roundtable conference started in London. In 1919, the freedom movement was in full swing with its non-cooperation movement spearheaded by Gandhiji. Also, the Government of India Act 1919 could not satisfy the demands of Indians for increased participation of Indians in all branches of governance.
There were increasing demands of granting dominion status to India among a certain section of the British polity too. Thus, to inquire into the working of the Government of India Act 1919, Simon Commission was appointed.
In response to the inadequacy of the Simon Report, the then British Prime Minister, Ramsay MacDonald, in 1929 decided to hold a series of roundtable conferences in London. There were 3 such conferences.
The first roundtable conference, convened from the 12th of November 1930 to the 19th of January 1931. Prior to the conference, Mahatma Gandhi had initiated the civil disobedience movement. Consequently, Congress did not participate in the first conference, but representatives from other Indian parties and a number of princes did. The outcomes of the first roundtable conference were minimal. The British government realized that the Indian National Congress needed to be part of deciding the future of constitutional government in India. The British Indian government released the political leaders of Congress to make a favorable environment for the talks between Gandhi and Lord Irwin.
After the end of the first roundtable conference, Tej Bahadur Sapru, C.Y. Chintamani and Srinivas Shastri appealed and tried to persuade Mahatma Gandhi to talk with Viceroy Lord Irwin. Following the talks in March 1931, the Gandhi-Irwin Pact was signed, and Gandhiji agreed to suspend the civil disobedience movement and also consented to participate in the second roundtable conference.
12th November is also the death anniversary of Pandit Madan Mohan Malviya, the famed Indian educationist and freedom fighter who is also called Mahamana.
Malviya was born on 25th of December 1861 in Allahabad and studied in Calcutta University. He then became a school teacher and later a lawyer and a newspaper editor. He is also the founder of the Hindu Mahasabha.
Malviya was an important figure in the non-cooperation movement.
In 1928, He joined Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru, and many others in protesting against the Simon Commission, which had been set up by the British to consider India's future. Just as the Buy-British campaign was sweeping England, he issued, on 30th of May 1932, a manifesto urging concentration on the Buy-Indian movement in India. Malviya was a delegate at the Second Roundtable Conference in 1931.
During the civil disobedience movement, he was arrested on the 25th of April 1932, along with 450 other Congress volunteers in Delhi. Malviya was the only leader of the Indian National Congress who was appointed as its president for 4 terms.
Malviya always tried for Hindu-Muslim unity. He gave 2 famous speeches on communal harmony, one in Lahore in 1922 and in Kanpur in 1931. In his presidential address at the INC's Calcutta session in 1933, he said,
"I implore all Hindus and Muslims, Sikhs, Christians and Parsis and all other countrymen to sink all communal differences and to establish political unity among all sections of the people."
इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था।
To redeem his resolve to serve the cause of education and social service, he renounced his well-established practice of law in 1911 forever in order to follow the tradition of sannyasa throughout his life. He pursued the avowed commitment to live on society's support.
But when 177 freedom fighters were convicted to be hanged in the Chauri Chaura case, he appeared before the court despite his vow and got acquitted 156 freedom fighters. Malviya, who was keenly interested in uplifting the educational standards of the country, was the principal founder in 1916 of the Banaras Hindu University in Varanasi, a premier institution of learning.
Malviya's consciousness toward the public led to the launch of his own Hindi language weekly, the Abhyudaya, the leader of Allahabad, an English language daily, and the Hindi monthly, the Maryada.
He was conferred with the Bharat Ratna, along with former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee.
In business news today, domestic benchmark equity indices today plunged over 1% amid sell-off across sectors. The 30-share BSE Sensex tanked 821 points to close at 78,675, while the NSE Nifty 50 dipped 258 points to settle at 23,883. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.5%, up at $72.25 per barrel, and the WTI crude gained 0.6% to trade at $68.45 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading down at 75,040 rupees for 10 grams. Silver 999 fine is also trading down at 88,830 per 1 kilogram when reports last came in.
और अब खेल जगत की अगर हम बात करें तो भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज से शुरू हो रहे जापान मास्टर्स सुपर 500 में BWF टूर एक्शन में अपनी वापसी करेंगे। सिंधु कल महिला सिंगल्स के पहले दौर में थाईलैंड की बोसानन ओंग बाम रुंग फान से भिड़ेंगे, जबकि जापान के कुमामोतो प्री फ्रैक्चुरल जिम्नेजियम में सिंगल्स वर्ग में लक्ष्य का मुकाबला मलेशिया के लियोन जून हाउ से होगा। और अभिषेक, समय है अब उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है, तो इस क्रम में सबसे पहले आज हम किसकी बात कर रहे हैं?
यस, विलियम क्विंसी पोर्टर पास्ड अवे ऑन दिस डे। ही वाज एन अमेरिकन कंपोजर एंड टीचर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। लेट्स लिसन इन टू अ हिट ट्रैक ऑफ हिज।
Oh, और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं विद्वान, शिक्षा सुधारक और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रणेता मदन मोहन मालवीय को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। देश के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने में गहरी रुचि रखने वाले मदन मोहन मालवीय 1916 में भारत माता की जय के मुख्य संस्थापक थे। और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं आसिफ बसरा को, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे अभिनेता और टीवी कलाकार थे और साथ ही रंगमंच के जाने माने कलाकार थे और कई नाटकों में उन्होंने काम किया था। तमाम ऐसी फिल्में आई जिनमें उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे, तो उनमें ब्लैक फ्राइडे, परजानिया, काई पोचे, जब वी मेट, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, क्रिश, एक विलेन, मंजुनाथ, कलाकंदी, फ्रीकी अली और दी ताशकंद फाइल्स जैसी तमाम फिल्में ऐसी रही जिसमें उन्होंने अहम रोल अदा किया था। हालांकि आसिफ ने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र से ही स्टेज पर एक्टिंग करना शुरू कर दिया और उसी की बदौलत वो एक जाने माने अभिनेता बने।
जॉन ग्रेहम मिचेल passed away on this day in 2008. He was an English drama and child actor, best known for his work in the Jimi Hendrix Experience, for which he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1992. Let's listen in to his hit track, Peace of Mind, and it's from the album New Improved.
Just before my daddy left, he stopped to shake my head.
Yes, and Eric Saltzman passed away on this day in 2017. He was an American composer, scholar, author, impresario, music critic and record producer. He is best known for his contributions to New Music Theatre, a concept he advanced through both his compositions and writings. He established it as an independent art form, distinct from the grand opera and popular musicals, both aesthetically and economically. He co-founded the American Music Theatre Festival and was at the time of his death composer in residence at the Center for Contemporary Opera.
और श्रोताओं, आज जन्मदिन जयंती है सालिम अली की। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। वे पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की है। पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए परिंदों के इस मसीहा की प्रकृति संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
यस, एंड सलीम अली निकोल, अलोंग विद सिडनी डिलन रिपली, रोट द लैंडमार्क 10-volume हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, अ सेकेंड एडिशन ऑफ विच वॉज कम्प्लीटेड आफ्टर हिज डेथ। एंड लाइक यू सेड, ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण इन 1958 एंड पद्म विभूषण इन 1976, इंडियाज थर्ड एंड सेकेंड हाइस्ट सिविलियन ऑनर्स रेस्पेक्टिवली। एंड ऑल्सो नील पर्सिवल यंग वॉज बॉर्न ऑन दिस डे इन 1945। ही इज अ कैनेडियन एंड अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर। After embarking on a music career in Winnipeg in 1960s, Young moved to Los Angeles, joining the folk rock group Buffalo Springfield. And since the beginning of his solo career, often with the backing by the band Crazy Horse, he has released critically acclaimed albums. Let's listen in to his hit track, Revolution Blues.
और श्रोताओं, आज जयंती है अख्तरुल ईमान की। वे उर्दू नज्म के नए मानक स्थापित करने वाले अद्वितीय शायर रहे हैं जिनकी नज्में उर्दू अदब की धरोहर का अमूल्य हिस्सा हैं। उन्होंने उर्दू शायरी की लोकप्रिय विधा गजल से किनारा करते हुए सिर्फ नज्म को ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का जरिया बनाया और एक ऐसी जबान में गुफ्तगू की जो शुरू में उर्दू शायरी से दिलचस्पी रखने वाले तगज्जुल और तरन्नुम आशना कानों के लिए खुरदरी और गैर शायराना थी, लेकिन वक्त के साथ ही यही जबान उनके बाद आने वाले नए विषयों और अभिव्यक्ति के नए आयाम तलाश करने का हवाला बनी। आपको बता दें कि मुंबई में 50 साल के अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने नगमा, रफ्तार, जिंदगी और तूफान, मुगले आजम, कानून वक्त, हमराज, दाग, आदमी और मुजरिम जैसी कई फिल्मों में संवाद लिखे।
Yes, and also let me tell our listeners, Nikhil, that Ryan Thomas Gosling was born on this day in 1980. He is a Canadian actor, prominent in both independent films and major studio features. His films have grossed over $2 billion worldwide.
और श्रोताओं, इसके साथ ही अब समय हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, तो निखिल और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
नमस्कार।
Thank you.